السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انشقاق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ انشقاق آیت نمبر 14-25. الحمدللہ، ہم پچھلی دفعہ اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے تھے اور وہاں پر ہم نے یہی پڑھا تھا کہ دو لوگوں کا وہاں پر بتایا گیا تھا، ان کے اعمال یا ان کا رویہ اور طریقہ، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق گزارتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور دنیا کے کام کاج انہیں آخرت کی یاد سے غافل نہیں کر دیتے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں اور انہیں خاص طور سے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اور وہ ان کے اہل و عیال جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اسی بنا پر وہ صرف زندگی کو ایک ہنسی کھیل تماشا نہیں بناتے نہ سمجھتے ہیں، یا کھیل اور دل لگی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں. دوسرا رویہ بتایا گیا تھا ایسے شخص کا جو آگ میں جانے والا ہے، تو یہ دراصل دنیا میں اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں میں اس قدر مست مگن تھا کہ اس کو آخرت کی یاد آتی ہی نہیں تھی، یا وہ آخرت کی یاد کو اس نے فراموش کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا چکا تھا. تو یہاں پر وہی لوگ، یعنی سیکنڈ گروہ وہ تھا جو کہ اللہ کی یاد کو بھلائے رہا، اللہ پر ایمان نہیں لائے یا آخرت پر ایمان نہیں لائے اور اپنی زندگی کو صرف دنیا میں مست مگن رہ کر گزار دیا، نہ آخرت کی جواب دہی کا احساس اور نہ ہی فکر آخرت. تو ایسے دو لوگوں کا انجام پھر بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کا جملہ پڑھا تھا کہ دنیا کی آسائشیں اور فرحتیں آسان ہیں جبکہ آخرت کا حزن و ملال طویل ہے. تو کیا یہ ورتھ ہے کہ یہ دنیا کی جو آسائشیں اور فرحتیں ہیں، جو کہ بہت ہی تھوڑے دیر کے لیے ہے، کم وقفے کے لیے ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، کہ اس کے مقابلے میں یہ فائدہ مند ہے یا وہ آخرت کا فائدہ بہتر ہوگا؟ تو یہ ڈیسیجن ہمیں خود لینا ہے اور ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے آئیے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 14-15-16-17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. آیت 18 تک. ترجمہ: اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعاً، یعنی اللہ کے پاس لوٹ کر نہ آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا. بس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل بن جاتا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹ کر جائے گا وہ اللہ کی طرف. کیوں نہیں؟ بلا شبہ اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا. بس قسم کھاتا ہوں میں شفق کی اور رات کی، اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے یعنی سمیٹتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے. اب یہاں انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. پیچھے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، جو اپنے اہل خانہ میں بہت ہی خوش مست مگن اور مسرور تھا، تو اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعاً اللہ کے سامنے حاضر نہ کیا جائے گا. ایکچولی اس کی یہ آخرت کے تعلق سے بے فکری، یا آخرت کے تعلق سے شک و شبہ، یا آخرت کے تعلق سے ایمان نہ لانا اسے لے ڈوبا. اس چیز نے اسے کہیں کا نہ رکھا اور آخر کار وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب ہی نہیں دینا ہے، یا اسے بس صرف یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد ختم، موت ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں. تو ایکچولی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، سلف صالحین اسکالرز ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ دراصل انسان جب آخرت سے بے خوف ہو جاتا ہے تو اس پھر وہ جیسی چاہے زندگی گزارتا ہے، उसकी ज़िंदगी में कोई पाबंदियाँ नहीं होती, उसे कोई फ़िक्र कोई एहसास नहीं होता, उसे कोई जवाबदेही का एहसास नहीं रहता। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो आयत में लफ्ज़ आए कि इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, यहूर हम उर्दू ज़बान में महवर का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा। महवर हम कहते हैं ना कि महवर किसी चीज़ के बीच के हिस्से को कहते हैं, जहाँ सब लोग लौट कर आते हैं, जमा होते हैं सब लोग एक जगह, सेंटर भी जिसको कहा जाता है। तो महवर का जो माना होता है हार बमानी घूम फिर कर उसी जगह वापस आ जाना जहाँ से चला था। इन इस लफ्ज़ में बेसिकली देखा जाए तो दो मानी पाए जाते हैं, दो बातें पाई जाती हैं, एक तो है घूमना और दूसरा है रुजू करना। हार अल माओ मिन फिलगदीर कहते हैं, यानी पानी हौज में घूमने लगा, और महवर उस डंडे को कहते हैं जिसके गिर्द चरखी घूमती है। यानी उस शख्स को ये ख्याल तक नहीं आया था कि दुनिया के इन मुख्तलिफ किस्म के धंधों और ये कामकाज से लौट कर बिलाखिर मुझे अपने रब के पास पहुँचना है। उसको एहसास ही नहीं था कि मुझे, चाहे मैं दुनिया में जितना भी अरसा ज़िंदगी गुजारूँ, मैं चाहे दुनिया के किसी हिस्से किसी कोने में चला जाऊँ, कोई इंसान चाहे डूब कर मरे या जल कर मरे, आखिरकार उसको लौट कर उसकी खाक को अल्लाह ताला समेटेगा और उसको उठाकर खड़ा कर देगा क़यामत के दिन, और उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इंसान दरअसल इस बेफिक्री में था, उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे घूम फिर कर आखिरकार अपने रब की तरफ जाना है। और जैसे हम कहते हैं ना कि पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का खमीर था। तो अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, आखिरकार जाना उसको अल्लाह ताला के सामने ही, अल्लाह ताला के आगे उसको जवाब देना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको एहसास ही नहीं था, उसको गुमान ही नहीं था, वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता रहा और ये समझता रहा कि मुझे अल्लाह ताला के सामने कोई जवाब नहीं देना है। इसके बारे में शंकेटी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये दरअसल अदम ईमान, यानी आखिरत पर ईमान ना लाना और उसमें शक करना, ये इंसान को शर से करीब ले जाता है और खैर से रोकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, यानी आखिरत पर अदम ईमान या आखिरत पर शक इंसान को शर से करीब ले जाता है और खैर से रोकता है, और आखिरत पर ईमान इंसान को खैर की तरफ ले जाता है। आखिरत पर ईमान इंसान को आमल सालेहा की तरगीब देता है या आमल सालेहा करने में मदद देता है। सुभान अल्लाह कितनी बड़ी बात है। आप देखें कि क्यों इंसान आखिरकार काम करे दुनिया में, नेक क्यों तकलीफ़ उठाए, क्यों अपने ऐशो आराम को छोड़े, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे आखिरकार अपने रब के पास जाना है, और वो जानता है कि मुझे हर एक एक चीज़ का हिसाब किताब देना है। यही चीज़ उसको आखिरत से बेफिक्र नहीं होने देती, बेखौफ नहीं होने देती, फिर वो नुकसान वाले काम नहीं करता है। यानी वो अपने आखिरत के नफ़े और नुकसान पर नज़र रखता है। मैं और आप हम सोचें कि आज हम ज़ुबान से तो ईमान का दावा करते हैं, ज़ुबान पर दावे बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, लेकिन हमारा हाल बहुत ही मुख्तलिफ है इससे। बहुत सारे मुसलमान भी आज इस हाल का शिकार हैं या इस हालत का शिकार हैं कि ज़ुबान से दावे तो बहुत हैं कि हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनके आमाल उस बात का सबूत नहीं पेश कर रहे होते। असल चीज़ है हमारे आमाल में तब्दीली। आप देखें सहाबे कराम ने जब यकीन किया, ईमान लाए, उनकी ज़िंदगियाँ बदल गईं, उनका उठना बैठना, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी, उनका नुक्ते नज़र, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनका अमल, उनका बिज़नेस, हर चीज़, जिन जिन चीज़ों में उनको शक व शुबा था कि ये अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा, उन्होंने छोड़ दिया। जिन जिन चीज़ों के बारे में उनको मालूम था कि ये चीज़ें गुनाह की तरफ ले जाती हैं, वो उसके करीब भी जाने से डरने लगे। इस कदर उनको फ़िक्र हो गई थी आखरत की, आखरत में जवाबदेही का एहसास उनको इस कदर था कि अम्र बिन आस जब रदी अल्लाह अन्हु आए इस्लाम कबूल करने के लिए, और काफ़ी सोचने समझने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ऐसे जज्बाती तौर पर ईमान नहीं लाए थे वो, सुलह हुदैबिया के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बहुत ज़हीन शख्स थे। जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और रसूल अकरम इस बात पर बहुत खुश थे जब उस्मान बिन तलहा, अमर बिन आस रदी अल्लाह अन्हु और खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु, ये सब सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए थे ये लोग। जब ये लोग मदीना में इस्लाम कबूल करने के लिए आए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए थे इन लोगों के ईमान लाने से, क्योंकि ये मुआशरे पर असरअंदाज़ होने वाले लोग थे। तो रसूल अकरम ने फरमाया था कि मक्का ने अपने जिगर गोशों को इस्लाम की गोद में डाल दिया है। सुभान अल्लाह। तो जब अमर बिन आस आए और आपके पास बैठकर इस्लाम की बात की कि मैं कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम, और कलमे शहादत उनको जब पढ़ने के लिए कहा गया, और जब रसूल अकरम उनसे बैत लेने लगे, तो उन्होंने बैत करते वक्त अपना हाथ आगे किया और फिर अचानक पीछे खींच लिया। रसूल अकरम ने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं इस यानी मुझे क्या करना होगा, और क्या इस बात का सबूत है कि मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, यानी क्या मैं इस्लाम लाता हूँ तो मेरे पिछले गुनाहों का क्या होगा जो मैंने इस्लाम लाने से पहले किए थे। تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام سے پہلے جو بھی گناہ کیے گئے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ اور تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ آگے پیش کر دیا اور بیعت کر لی رسول اکرم کے آگے ہاتھ پر۔ تو یہ فکر تھی دیکھیں صحابہ اکرام کو، ان کو اپنے گناہوں کی فکر تھی، وہ بھی کب کے؟ جب جو زمانے جاہلیت میں ہوئے تھے، جب وہ اسلام سے پہلے کی حالت میں تھے۔ اور آج ہم اسلام کی حالت میں ہو کر بھی ہم کو فکر نہیں ہے، ہم کو کچھ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے، آج ہمارے عمل ویسے نہیں ہیں۔ بزنس دیکھ لیجئے، اس میں جھوٹ شامل ہے، ملاوٹیں ہیں، جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، ہر جگہ ڈنڈی ماری جاتی ہے، ہر جگہ جو اپنی جاب ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا۔ ہم سب کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے بحیثیت امت مسلمہ، پھر بحیثیت ایک خاندان کے سرپرست، ایک ماں ہونے کے ناطے ہر انسان، ہر مسلمان اپنے اپنے دائرے میں کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار ہے۔ تو کیا ہم کو آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے؟ کیونکہ یہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے میں مدد دے گا۔ کیوں یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ آخرت پر ایمان انسان کو کیا کرتا ہے؟ اعمال صالحہ میں مدد دیتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور انسان پھر نیک کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال فکر ہمیں اس دن کی ہونی چاہیے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ وہ سمجھ رکھا تھا اس نے کہ ہم اس کو دیکھنے والے نہیں ہیں، یا ہم اس کے اعمال کو جمع نہیں کر رہے ہیں، یا ہم اس کے اعمال پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ کیا وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شک و شبے میں پڑا تھا؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں تھا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت نہیں ہوگی، ہم کیسے پھر تنہائی میں اور ایسے وقت بھی ان تمام کاموں سے بچیں گے جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں؟ یعنی ہم کو لوگوں کے دیکھنے کا تو زیادہ ڈر ہے، ہم کو اللہ کے دیکھنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیسے وہ اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اس کا رب اسے دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیوں نہیں، اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، اس کا رب اس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اس کے رب نے اس کے ہر اعمال کو گھیر رکھا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کچھ کر رہے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تو اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، بس اس نے اچھا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح گمان نہیں کیا، جبکہ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسے رک جائے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے رک جائے، اس کو ثواب اور عذاب کی کوئی پرواہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی العلیم صفت کی تشریح ہے کہ وہ تمام علم رکھتا ہے۔ بندوں کا علم، ہم جیسے لوگوں کا علم تو بہت ہی ناقص ہے، ہم کو تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن انسان کے ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر موت تک، ایون ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بچے کی قسمت کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ ہی نے اس کا سب کچھ یعنی تقدیر بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے تقدیر اس کی مقرر کی ہے کہ وہ کیسا ہوگا کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تمام کاموں پر نظر تھی کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرے گا، روح کہاں سے آئی، بدن میں کس طرح کس چیز یعنی بدن کس چیز کن چیزوں سے بنا ہے، اور پھر پیدا ہو کر وہ کیسے اعمال کرے گا، مرنے کے بعد اس کی روح کہاں جائے گی، اس کے بدن کے اجزاء اگر بکھر بھی گئے، کسی نے اس کو جلا بھی دیا تھا، کسی نے اس کو ڈبو بھی دیا تھا، تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جمع کرے گا۔ یہ سب باتیں اللہ کی نگاہ میں تھی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے انصاف کے خلاف تھی کہ جیسے اعمال انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر کے اس کو کچھ اور بدلا دے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی جزا دی جائے؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ انسان کرے تو برے اعمال اور اس کو اس کی اچھی جزا دی جائے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ برے اعمال کر رہا ہے تو اس کو اس کی جزا بھی بری ہی ملے گی، یہی اللہ تعالیٰ کی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ضرور مواخذہ کرے گا۔ یہ احساس اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لینا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، یقین جانیے بہت ساری چیزیں خود بخود ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ شفق کی قسم کھائی گئی ہے، تو یہ تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی بہت ہی کچھ امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی امپورٹنٹ بات تھی اور اس کے بعد بھی کوئی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ जो लोग नहीं समझते हैं ताकि वो लोग अलर्ट हो जाएं, सुन लें और बात को संजीदगी से लें। जो लोग कुछ लोग होते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और शक में पड़े होते हैं, तो इसीलिए ईमान इंसान को बहुत सारे फ़ायदे देता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ शफक की, यानी शाम की सुर्खी की, बस मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूँ और रात की कि जब कुछ वो समेट लेती है और चाँद की जबकि वो माह कामिल बन जाता है। और फिर उसके बाद ईमान की बात की गई है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि शफक की कसम खाई गई, फिर वसक की। शफक क्या है असल में, हम पहले देखते हैं। हम सब ये लफ्ज़ रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। जब मग़रिब का वक्त होता है तो आपने देखा होगा कि इन्हीं रात का इफ्तिताह शुरू होता है, इन्हीं रात का आगाज़ होता है, उसको शफक कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने शफक की कसम खाई है। और दूसरा वसक। वसक का जो लुग़वी माना है, सूरज के तुलू होने के बाद सब इंसान जब तलाश मुआश की खातिर निकल जाते हैं, या चरिंद और परिंद भी अपना पेट भरने के लिए निकलते हैं और फिर वापस अपने घरों की तरफ लौट आते हैं, यानी जब रात हो जाती है तो सब लौट कर अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं, तो यही वसक का मफहूम है, यानी किसी चीज़ का अपने मुंतशिर अज्ज़ा को इकट्ठा करना और समेट लेना। तो शफक और वसक देखा जाए तो, और इज़्ज़त तसक का भी लफ्ज़ आया है कि फ़ला अक़सम बिशफ़क वल्लैली वमा वसक वल्क़मर इज़्ज़त तसक। तो शफक, फिर रात का छा जाना, रात का आगे बढ़ना, और शफक, शफक रात का इफ्तिताह होता है, और वसक यानी किसी चीज़ का अपने मुंतशिर अज्ज़ा को इकट्ठा करना और समेट लेना। जब सारे चरिन परिन लौट कर वापस आ जाते हैं, हर कोई अपने महवर की तरफ जाता है, हर कोई अपने घरों की तरफ लौट जाता है, अपने यानी जहाँ पर सुकून लेने के लिए इंसान लौटता है। और चाँद की कसम कि जब वो माह कामिल बन जाता है, उस वक्त चाँद आप देखें खूबसूरत तरीन और इंतहाई नफ़ा बख्श हालत में होता है, जिस पर कसम खाई गई है। आपने देखा होगा ना कि चाँद की तारीखों का घटना बढ़ना बहुत मानी रखता है, उससे समंदर पर बहुत सारे असरात होते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा हिजामा जब करवाया जाता है तो वो भी उसके लिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स, क्या कहते हैं कि चाँद की जो तारीखें होती हैं, जो अयाम बेस कहलाती हैं, उन दिनों में करना ज़्यादा वो फ़ायदा मंद है। अलग अलग चीज़ें हैं इसकी, खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है यहाँ पर, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम खाई है उसका भी आप यहाँ पर देखें कि कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई जानी मकसूद है। कि एक तो चाँद जब माह कामिल बन जाता है, और आप देखिए चाँद का भी जो बढ़ना होता है बतदरीज होता है, तो इसीलिए आगे जो कहा गया लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक, कि तुम एक हालत से अगली हालत को चढ़ते चले जाओगे या जा रहे हो। फ़मा लहुम ला युमिनून, फिर उन्हें क्या हो गया कि वो ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर दरअसल लतरकबुन्ना रकबा सवार को कहते हैं कि एक के बाद एक इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, तबक़न अन तबक, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ जाना। तो चाँद भी आप देखें जब बढ़ते रहता है यहाँ तक कि वो बदरे कामिल बन जाते हैं, पहले बिल्कुल छोटा सा होता है यानी हिलाल होता है, बिल्कुल एक खजूर की तने की शाख की तरह होता है, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है। तो ऐ लोगों, तुम गुजरते हो अलग अलग अतवार और अहवाल में से, यानी बतदरीज आगे बढ़ना। इंसान भी आप देखें यहाँ पर यह आयत हमें बहुत गौर फिक्र की दावत देती है। यहाँ पर दरअसल तीन बातों की कसम खाई गई है, और इससे ये बात हमें पता चलती है कि कायनात भी मुसलसल हरकत में है। कायनात में ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ठहराव है, हाँ हरकत है लेकिन सुकून के साथ हरकत है, यानी कि हर चीज़ अचानक हो जाती है। अब देखिए जब जलजला आता है तो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन रोज़ाना आप देखें ज़मीन अपनी महवर के गिर्द गर्दिश कर रही है, चांद सितारे सूरज सैारे हर चीज़ गर्दिश कर रही है, लेकिन आप देखिए हर कोई अपने महवर के गिर्द घूम रहा है, किसी में एक अचानक तब्दीली नहीं आती, क्योंकि अचानक तब्दीली से क्या होगा, सब चीज़ें एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तो कायनात में हरकत है मुसलसल लेकिन एक सुकून और ठहराव के साथ, और वो बिल्कुल मुंजमद होकर नहीं रह गए। अगर कायनात मुंजमद हो जाए, सब चीज़ जम जाए, तो आप देखिए कितना कुछ नुकसान हो, इंसान सांस ना ले सके, उसे जीने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन ना मिल सके। फिर ये यकदम चीज़ें वाकई नहीं हो जाती, हर चीज़ एक बतदरीज उसूल के तहत काम कर रही है। सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह सुभान तआला ने हर चीज़ को पैदा किया और फिर उसकी एक मकदार मुकर्रर की, उसमें एक ठहराव भी है, सुकून भी है, और तदरीज का उसूल काम कर रहा है। सूरज ग़ुरूब जब होता है तो आप देखें कि एकदम तारीकी नहीं आ जाती, बल्कि कुछ देर तक उसके असरात बाकी रहते हैं, पहले सूरज की ठंडी ठंडी रोशनी होती है सुबह के वक्त, आप देखें कितना अच्छा वो मंज़र लगता है जब सूरज निकलता रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है सूरज और धूप की तेज़ी बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि वह नसफ़ नहार तक पहुँच जाता है, यानी ऐन सरों के ऊपर हमारे जब उस वक्त शदीद गर्मी का वक्त होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ढलना शुरू होता है, यानी जवाल के बाद यानी ढलना शुरू होता है, असर का वक्त होता है। उस वक्त की आप देखें सूरज की जो तेज़ी होती है वो एक अलग ही ठंडक का एहसास देती है, उस वक्त का मंज़र कितना खूबसूरत लगता है। फिर ढलते ढलते यहाँ तक कि वह शफक बनता है, यानी शफक की तरफ आता है, फिर वसक यानी सूरज भी धीरे 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 यानी गुरूब होता जाता है, अंधेरा अचानक नहीं हो जाता। रात भी इसी तरह से बतदरी जाती है, पहले सुर्खी होती है शफक में, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे ज़्यादा डार्क कलर होता है, जर्द रंग हो जाता है आसमान पर, आपने देखा होगा, और उसके बाद फिर आखिरकार क्या होता है कि रात छा जाती है और वो तमाम अपने जो रहने वालों को मकीनों को अपनी तरफ खींच लाती है, अपनी करारगाह की तरफ, अपने रहने की और ठिकानों की तरफ खींच लाती है। फिर इसी तरह से चांद भी मुकम्मल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता होता है, बल्कि उसको कितने दिन लगते हैं, है ना, 14 तारीख यानी जो चांद की 13, 14, 15 तारीख हैं उसमें वो बद्र कामिल बनता है। उससे पहले आप देखिए कितना अरसा वो पहले छोटी सी शाख की मानंद होता है, फिर बढ़ता जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार मुकम्मल ज़रूर होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम लोग भी इसी तरह बतदरीज मंजिल मंजिल व मंजिल आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। इसमें 2-3 बातें समझ में और समझने की और सीखने की हैं कि आपने देखा होगा कि बच्चा जब पहले छोटा होता है, या अगर बच्चे से भी पहले की स्टेज ले लें कि पहले नुतफ़ा होता है, यानी उसकी 7 हालतें हैं, नुतफ़ा है, अलका है और मुदगा है, फिर अलग अलग वो बढ़ता जाता है यहाँ तक कि फिर उसकी पैदाइश होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल वो छोटा सा होता है, इवन उसके दांत भी नहीं होते, बाल नहीं होते, कितनी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, फिर बच्चा बढ़ते जाता है यहाँ तक कि एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी से वो एक मुकम्मल इंसान बनकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो मुकम्मल इंसान जब बन जाता है उसके बाद भी आप देखें उसके कई स्टेजेस हैं, यानी बचपन जवानी, बचपन लड़कपन जवानी, फिर मिडिल एज और फिर बुढ़ापा, उसमें भी उसको कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। अचानक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता, अचानक उसकी स्किन पर झुर्रियाँ नहीं आ जाती, और ये हर अतवार से हर दौर से उसको गुजरना ही है। ऐसा नहीं होता कि कोई बीच में एक वो दौर छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा कि कभी बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे पर चला गया इंसान, नहीं, स्टेज बाय स्टेज धीरे धीरे बतदरीज इंसान जा रहा है। ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि आखिरकार तुमको अपने एक और जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है तुम्हें वहाँ जाना है। इवन मरने के बाद भी आप देखिए जब इंसान मरता है तो अचानक वो सीधा हिसाब किताब के लिए नहीं चला जाता अल्लाह के सामने, बल्कि हमें जो कुरान और हदीस से बात पता चलती है कि इंसान की जब मौत वाकई होती है तो पहले वो कब्र की स्टेज से गुजरता है, पहले उसके कब्र में जाना पड़ता है, वहाँ सवाल जवाब होते हैं, फिर उसको कई अरसा आलम बरज़ख में गुजारना है जब तक क़यामत कायम नहीं होती, फिर क़यामत कायम होगी उसको क़यामत की सख्तियाँ झेलना है, उसके बाद मैदान हशर की सख्तियाँ झेलना है, उसके बाद हिसाब किताब होना है, और उसके बाद आखिरकार उसका जो अपना ठिकाना है जन्नत या जहन्नम, और यही 2 ठिकाने इंसान के, उसी की तरफ यहाँ इशारा किया गया है कि तुम्हारा जो ठिकाना है आखिर का, जो जब तुम्हें दोबारा जीकर उठना पड़ेगा, जो क़यामत की सख्तियाँ या अदालत है अल्लाह ताला की उसके आगे पेशी होगी, तो हर चीज़ में अल्लाह ताला का ये कानून कार फरमाए कि बतदरीज इंसान बढ़ रहा है। ये आयत दरअसल बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र का हमसे मुतालबा करती है। ये आयत को हम जितना इस पर गौर व फिक्र करें ऐसे लगता है कि इसमें कई बातें पोशीदा हैं, हमारे लिए इसमें कई हिकमत के मोती रख दिए गए हैं। इसीलिए जो मुफस्सरीन का कहना था कि कुरान पढ़ने से कभी पुराना नहीं होगा और उलमा इसकी तफसीर से कभी सैर नहीं होंगे, सुभानअल्लाह, हर वक्त जब इसको पढ़ा जाएगा तो एक इसके नए नए इसके जो हिकमत के मोती हैं या हिकमत की बातें हैं वो हम पर आशकारा होती रहेंगी, हमें इससे सीखने में मदद मिलती रहेगी हर हालत हर दौर में हर पीरियड में। तो इससे सबसे पहली बात तो हमें ये सीखने को मिली कि यही कानून आज हमारे लिए भी मौजूद है कि कायनात जब हरकत कर रही है और कायनात मुसलसल हरकत में और एक उसूल के तहत हरकत कर रही है और उसमें इस्तदराज यानी तदरीज है, अचानक कोई भी चीज़ नहीं हो जाती, तो इंसान को भी चाहिए कि वो भी मुसलसल हरकत में रहे। आप देखिए जब इंसान मुंजमिद हो जाए, जब उसके ऊपर जमूद तारी हो जाए, तो वो सुस्त और काहिल बन जाता है। और हमको रसूल अकरम ने स्पेशली दुआ सिखाई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसली वल बुखली, जो दुआ आती है कि कसलमंदी से, आजिज़ी से, सुस्ती और काहली से अल्लाह ताला हम तेरी पनाह चाहते हैं। तो ये जो जमूद जब तारी हो जाता है इंसान के ऊपर, तो वो किसी काम का नहीं रहता, ना वो दुनिया के काम का रहता है ना आखरत के काम का रहता है, तो हमको भी मुसलसल हरकत में रहना चाहिए। आप देखिए कि कुछ लोगों की ज़िंदगी गुजरती है ऐसे गुजरते चले जाती है, बस हर काम कल करेंगे परसों करेंगे, और वो कल और परसों आता ही नहीं कभी। तो ऐसे नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अब, यानी हमको एक्टिव रहना है, हमको हरकत में रहना है। आप देखिए अल्लाह ताला की हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की किस तरह से फरमाबरदारी कर रही है। कभी सूरज ऐसा हुआ कि उसने निकलने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं आज तो बहुत थक गई है तबीयत, बहुत सुस्ती और काहली हो रही है, कल निकलेंगे। अगर सूरज एक दिन निकलना छोड़ दे या सूरज एक दिन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, आप देखिए पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम और बरहम हो जाएगा। जब से अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, सुभान अल्लाह, जब से ये दुनिया बनी है सूरज इसी तरह से बराबर निकल रहा है अपने वक्त पर, और बराबर अपने वक्त पर ही गुरूब होता है, मुसलसल हरकत में है, और उसमें तदरीज है असल में। इसी तरह चांद, आप देखिए चांद की, अगर चांद निकलने से इनकार कर दे, चांद रुक जाए तो क्या होगा, दिन और रात का सारा निज़ाम तहोबाला हो जाएगा, क्योंकि चांद की तारीखों ही पर तो सब कुछ है। यानी हम जो महीनों की गिनती करते हैं वो चांद की तारीखों के हिसाब से करते हैं। तो सुभान अल्लाह, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रही है, एक तदरीज के साथ अपने काम अंजाम दे रही है। तो इंसान को चाहिए कि वो भी तदरीज के साथ अपने काम अंजाम दे। जिस चीज़ के लिए इंसान को भेजा गया है वो उसमें सुस्ती और काहली ना दिखाए, बल्कि एक्टिव रहे, हरकत में रहे। और वो जुमला उर्दू में आप लोग सुनते होंगे ना हमेशा कि हरकत में बरकत है ना। तो हमको भी मुसलसल, ये ज़िंदगी क्या है देखा जाए तो जोहद मुसलसल है। ये ज़िंदगी क्या है, मुसलसल हरकत का नाम है। अगर आप एक जगह बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, तो समझे कि वो तो फिर इंसान पर मौत तारी हो गई देखा जाए तो। और ये चीज़ जो सुस्ती और काहली है ये मौत से बढ़कर होती है। कौमों का उरूज और ज़वाल इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जो मुसलसल हरकत में रहती हैं, नए नए जावियों से गौर फिक्र करना, सोचना, कायनात को एक्सप्लोर करना, रिसर्च के काम करना, तहकीक करना, मुसलसल हमको हरकत में लगे रहना है। और इंसान बहुत सारे काम कर सकता है। आप ये ना सोचें कि मुझे तो सिर्फ 24 घंटे मिले हैं और मुझे मेरी घर की जिम्मेदारियां ही बहुत ज़्यादा हैं, खाने पकाने से मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन आप देखें कि सिर्फ खाना पकाना ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। ठीक है, वो भी ज़रूरियात ज़िंदगी में से है, उससे इनकार नहीं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं दुनिया में। हमको अपनी आखिरत की भी फ़िक्र करनी चाहिए, मुझे और आपको, कि हम क्या तोशा लेकर जा रहे हैं। हम अपने मरने के बाद कोई एक ऐसा काम तो छोड़ जाएं जो हमारे लिए सदक़े जारिया हो। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हम अपने इन्हीं औकात में से वक्त बचाकर अपनी आखिरत के लिए काम करते रहेंगे। तो इंसान को भी मुसलसल हरकत में रहना चाहिए और मुसलसल जद्दोजहद करता रहे। और दूसरी बात ये कि अपने आप को एक्टिव रखे। जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा जो लोग रिटायर्ड लाइफ गुजारते हैं तो वो बहुत बोर ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर उनको बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जब इंसान घर में बैठ जाता है, और एक चीज़ अक्सर देखने में आई है कि जब हमारे बच्चों की शादियां होती हैं या स्पेशली जब बेटों की शादियां होती हैं, तो बेटों की शादियों के वक्त वालदेन ये समझने लगते हैं, स्पेशली माँ ये समझने लगती है कि अब चूंकि मैं रिटायर हो गई हूँ और बहू आ गई है, वही सारा किचन संभालेगी और वही काम करेगी। तो आप देखें कि 40-45 साल की उम्र में यूजुअली बहू यानी बच्चों की शादियां होती हैं, जिनकी अगर शादियां जल्दी हो गई थी तो उनको, उनके बच्चे बड़े हो गए तो उनके बेटों या बेटियों की भी शादियां हो जाती हैं। तो अब अगर वो खातून ये सोचे कि अब तो बस मैं तो सास बन गई हूँ, तब मुझे तो कुछ काम करना ही नहीं चाहिए, मैं तो किचन में नहीं जा सकती, और वो बैठ जाती है, और बैठने की वजह से फिर ना चाहते हुए भी या ना होते हुए भी उसको फिर घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है, और ज़बरदस्ती उसको बीमारियाँ घेर लेती हैं, क्योंकि सुस्ती और काहली की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को चाहिए कि हम एक्टिव रहें, इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। 40 साल की एज या 45 साल की एज अभी तो आप यंग है ऐसा समझें, और इस एज में तो आपको और ज़्यादा मज़ीद काम करने हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो उसके अंदर समझदारी पैदा होती है। तो असल समझदारी तो उसी वक्त हमारे अंदर आती है, ये पैदा होना चाहिए। तो हमको तो और ज़्यादा समझदार होना चाहिए, जब हमारे घर में बहुएँ आती हैं तो उनके साथ अच्छाई का मामला करें। उनको क्यों किचन में जाने दें, हम खुद किचन में चले जाएं, हम उनको कुछ दिन हम उनकी खदमत करें, अभी वो नई नई आई हैं, बाद में फिर भले ही उनसे खदमत लें। ये काम को बांटने, अपने आप को रिटायर्ड लाइफ में ना डाल दें इतनी जल्दी। और जो लोग जॉब से रिटायर होते हैं उनको भी चाहिए कि वो रिटायर्ड लाइफ इस तरह से ना गुजारे कि बस बिल्कुल घर में बैठ गए। वो बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भर का तजुर्बा वो यंग जनरेशन को दे सकते हैं। तो एक्टिव रहने में बहुत फ़ायदे हैं। जब इंसान एक्टिव रहते तो उसको बीमारियां नहीं घेरती हैं। जब वो घर में बैठ जाता है या एक जगह बैठ जाता है मुंजमद होकर, हरकत नहीं करता, तो फिर उसको शुगर, बीपी और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो बहरहाल कामकाज करते रहिए, उससे ज़्यादा ध्यान बीमारियों की तरफ नहीं जाएगा। तो एक्टिव रहें तो इंसान एक हालत से दूसरी हालत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी इंसान के अंदर ख़ुद कई किस्म के तगैरात दिन रात होते रहते हैं, ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात में भी, कायनात में भी, और ये तगैरात वो अपनी आँखों से देखता है। ये सारी चीज़ें यानी कायनात पर अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो उसको पता चल जाए कि ये सब अल्लाह ताला ने पैदा किया है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी उसका क्या हाल है कि फ़मा लहुम ला यूमिनून, कि फिर क्या हो गया आखिर तुम्हें कि तुम ईमान क्यों नहीं लाते। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी ईमान न लाना कितनी बदबख्ती है और कितनी दुख की बात है। तो आप देखें, ईमान के फ़ायदे बे इंतहा है। ईमान इंसान के अंदर हो तो उसके हर चीज़ सही रुख पर होती है, लेकिन ईमान अगर ना हो तो हर चीज़ फिर बेकार हो जाती है। ईमान लाने के बाद अगर वो छोटा सा भी नेक अमल करता है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अजर पेश किया जाएगा, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है और बड़े बड़े नेक काम भी हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये ईमान ही जो इंसान को शर से रोकता है और खैर की तरफ ले जाता है। आखिरत पर ईमान इंसान को अमल सालेह में मदद देता है। ज़ुबान से ईमान के कितने भी दावे हो लेकिन अगर अमल उसके मुताबिक ना हो तो ये फिर ये चीज़ बेफ़ायदा है। तो बहरहाल ईमान के यहाँ बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं और ये बताया गया है कि हर चीज़ एक स्टेज के साथ यानी बतदरीज स्टेज बाय स्टेज अपनी आखिरी हालत की तरफ बढ़ती है। तो ए इंसानों, तुम लोग भी सोचो, गौर व फिक्र करो और इन तमाम बातों पर ईमान लाकर अपनी आखिरत की तैयारी करो। कायनात में गौर व फिक्र करो, अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें नाजिल की हैं उस पर गौर व फिक्र करो और अपने ईमान में इजाफा करते चले जाओ। तो ये चाँद और सूरज का बार बार हमको कुरान में जिक्र मिलता है, समंदरों का जिक्र मिलता है, हवाओं का जिक्र है। अल्लाह ताला ने क्यों ये सारी बातें पेश की कि कुदरत के नज़ारों पर या कुदरत की चीज़ों पर इंसान गौर करे जो अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है। अगर इंसान इन तमाम चीज़ों पर गौर कर ले तो उसके ईमान लाने के लिए यही चीज़ काफ़ी है। तो हम भी अपने आप पर गौर करें, अपनी ज़ात पर गौर करें कि कैसे इन्हें सुभान अल्लाह, आप सोचें कि कैसे एक बच्चा बिल्कुल जहाँ उसको न हवा है, न पानी है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे अल्लाह ताला एक नुतफे से एक गोश्त का लोथड़ा होता है और वो गोश्त का लोथड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें हड्डियाँ बनना शुरू होती हैं, उसमें फिर गोश्त आता है, स्किन बनती चली जाती है। तसव्वुर करें, इमेजिन करें ज़रा, ये जो बच्चे की पैदाइश है अगर सिर्फ इस पर लोग गौर कर लेना तो वो अपने रब को पहचान लें और अपने रब पर ईमान ले आए, लेकिन इंसान गौर नहीं करता। फिर ये जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखें कैसा बच्चा बेबस होता है कि वो अपनी गंदगी भी साफ़ नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और आखिरकार वो एक मुकम्मल इंसान बन जाता है। उसकी तमाम क़ुव्वतें अपने उरूज पर होती हैं और जब उसकी क़ुव्वतें उरूज पर होती हैं तो वो अपने रब को भूलने लगता है, उसको सिर्फ ये दुनिया की रंगीनियाँ नज़र आती हैं। तो कहा जा रहा है कि इतना मत अकड़ो, इतना मत इतराओ अपनी जवानी पर या अपनी क़ुव्वतों पर, आखिरकार फिर तुम्हें वापस कहाँ आना है। फिर वो वापस आता है कहाँ, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद उम्र ढलना शुरू हो जाती है, फिर उसके आज़ा जवाब देने लगते हैं, उसकी क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी स्किन पर झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो कहा जा रहा है कि ए इंसान ज़रा सोचो तो सही, और आप देखें कि आखिरकार क्या होता है कि कितनी दवाइयों के सहारे हो जाते हैं हम लोग, बीपी की टैबलेट और पता नहीं कौन कौन सी कितनी। इन्हें जब हम कहीं जाते हैं सफ़र पर तब हमको अपने कपड़ों की फ़िक्र नहीं होती कि हम कौन से कपड़े ले जाएंगे, कौन सा लिबास पहनेंगे, फ़िक्र होती है कि दवाइयों का डब्बा हमारे साथ है या नहीं है, अगर दवाइयों का बॉक्स भूल गए तो हम क्या कैसे गुजारा करेंगे। तो आखिरकार इंसान फिर कमज़ोरी की हालत में पहुँच जाता है। तो उसे बताया जा रहा है कि इंसान अपनी हालत पर तो गौर करे, क्या ये यूँ ही हो गया। अगर वो अपनी हालत पर गौर कर लेगा तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आएगा। तो कायनात मुसलसल हरकत में है और ये कायनात हमें दावत दे रही है कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं, आखरत पर ईमान लाएं। तो ए लोगों, तुम भी बदतरीज अपने आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, मैं और आप देखें हर गुजरता हुआ दिन हमें किसके करीब ले जा रहा है, क़यामत के करीब लेकर जा रहा है, आखरत के करीब लेकर जा रहा है, हमें अपनी कब्र के करीब लेकर जा रहा है और अल्लाह ताला के करीब लेकर जा रहा है कि आखिरकार हमको हिसाब किताब देना है, हमको अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है। तो जो लोग इन सब निशानियों को देखने के बावजूद भी ईमान नहीं लाते उनके ऊपर हैरत का इजहार किया गया है। और कुरान पर इस पर जो ईमान नहीं लाना है वो उसकी वजह क्या है, यानी उनके सामने जब कुरान पढ़ा जाता है, आगे देख लीजिए आयत नंबर 21-22, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ। जब उन पर कुरान पढ़ा जाए तो सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर लोग तो उल्टा झुटला देते हैं, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ के वो दिलों में महफूज रखते हैं। یعنی وہ کیوں کیا ہو گیا ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، تو قرآن پر ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ضد، ہٹ دھرمی، نفس پرستی، تکبر، حق سے دوری، حق سے اناد، اور اپنی من مانی زندگی گزارنا، رب کی مرضی کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی گزارنا، وہ قرآن میں شک کرتے تھے، اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے تھے، یا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے. کیوں قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ کیونکہ ان کو اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنا نہیں تھا. اگر وہ اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے یا چھوڑ دیتے اپنی مرضی کی زندگی، تو پھر ان کو بہت سارے چیزوں کو چھوڑنا پڑتا تھا. ان کا تکبر چلا جاتا، ان کی ضد چلی جاتی، پھر انہوں نے ایک چودراہٹ جو قائم کر رکھی تھی وہ چودراہٹ ختم ہو جاتی. ان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا پڑتا تھا، رسول کا فرما بردار بننا پڑتا تھا، یہ چیز ان کو مناسب نہیں لگتی تھی. اسی بنا پر وہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائے، تکبر تھا ان کے اندر. اور یہاں پر دراصل سجدہ بھی ہے، تلاوت کا سجدہ، سجدہ تلاوت جسے کہتے ہیں. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہی سورت پڑھی اور سجدہ کیا. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی یہی سورت پڑھی اور سجدہ کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے. اور ایک اور روایت میں اس کے آگے ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ سورہ انشقاق اور سورہ اقرا میں ہم نے سجدہ کیا تھا رسول اکرم کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدہ تلاوت ہے آیا ہے، یعنی کچھ جگہوں پر ہے، بعض کے نزدیک 14 ہے اور بعض کے نزدیک کچھ کم زیادہ ہیں. تو بہرحال یہاں پر اگر نماز میں امام سجدہ تلاوت کرے گا تو مقتدیوں کو بھی سجدہ تلاوت کرنی پڑے گی، اور اگر امام نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تو مقتدیوں کو بھی پھر نہیں کرنا ہے. لیکن پرسنلی آپ اور ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اگر سجدہ تلاوت آ گئے تو اس کو اسی وقت کر لینا چاہیے. ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ پورا قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ساتھ 14 سجدے کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ کو کرنا ہے تو اسی وقت کر لیں، اگر پاسبل نہیں ہے اس وقت کرنا تو جتنا جیسا بیٹھے ہوئے جھک جائیں. یعنی سجدہ تلاوت مستحب اور پسندیدہ ہے، اور اگر جب امام نماز میں امام کرے تو پھر اس وقت مقتدیوں کو کرنا واجب ہے. لیکن عام حالت میں، جیسے کیونکہ بعض وقت خواتین حالت حیض میں بھی ہوتی ہیں تو کیسے کریں گے وہ، تو سجدہ تلاوت ایسے بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ جس حالت میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے وہ سجدہ تلاوت کی آیت آئے تو اسی وقت آپ کو سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہی سجدہ ہوگا یہ. تو بہرحال یعنی قرآن کو سن کر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے. اور یہاں پر اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. یعنی قرآن پڑھنے کے کئی جو حقوق ہیں، یا قرآن کے جو ہم پر کئی سارے حقوق واجب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی جائے، اس میں غور و فکر اور تدبر بھی کیا جائے، اس کو کبھی کبھی سنا بھی جائے. یعنی صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، سننا بھی ہے، اور سن کر پھر ایسے ہی گزر نہیں جانا ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سجدے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ کافر سجدہ نہیں کرتے تھے. یا پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اکڑ دکھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں شیطان نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا، یعنی یہ ایکچولی اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات والا معاملہ ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی بجا لائیں. اگر قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں ہماری نمازوں میں پابندی نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں ہے، اور اگر فرائض کی پابندی ہے تو ہم نفل کی پابندی نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے لوگ نفل چھوڑ دیتے ہیں. تو نفل نماز سے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ اس سے کثرت سجود ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارے سجدے ہوتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور ویسے بھی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے نا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہمارے آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ جو دنیا کی جو آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، وہ آسان ہیں، لیکن ہاں آخرت کا حزن و ملال بہت طویل ہے. تو کوشش کریں کہ دنیا میں اگر مشقت کی زندگی گزارنا بھی پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آخرت میں پھر جو راحت ملے گی وہ بہت زیادہ ہمیشہ کی راحت ہوگی وہ، اور پھر کوئی غم اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا. تو دنیا میں تکلیف اٹھا لینا قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو یہاں پر جو چونکہ سجدے کی بات آئی ہے، تلاوت قرآن کی بات آ رہی ہے، کہ ایک تو قرآن نہیں پڑھتے یا اس پر ایمان نہیں لاتے، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کثرت سجود کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اور جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے گا، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے ملے گے. रबिया बिन काब असलमी एक यंग से सहाबी थे, लड़के ही थे कहना चाहिए, और उन्होंने ख़ुद को अपने आप को रसूल अकरम की खदमत के लिए वक्फ कर दिया था। तो वो कहते हैं कि मैं रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में गुजारता था, सुबह से लेकर रात तक। तो अनस रदी अल्लाह अन्हु रहते थे, है ना, आपको याद होगा। तो रात में ये रहते थे दरवाजे के बाहर ही, कहा जाता है कि वहीं साए में या जो असहाबे सफ़ा में से कहीं हो सकता है आराम, थोड़ी देर के लिए लेट जाते हों, लेकिन रसूल अकरम की खदमत के लिए रात वहीं गुजारते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू का पानी और दूसरे काम वगैरह कर देता था, स्पेशली तहज्जुद के लिए ये उठते थे और फजर के वक्त रसूलुल्लाह को वुज़ू करवाते और रसूल अकरम का पानी लाते थे वुज़ू के लिए। तो एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल, मांग, क्या मांगता है। सुभानअल्लाह, बहुत ही अच्छी हदीस है। तो फ़क़ुल, तो मैंने कहा, असअलुका मुराफ़िक़तका फ़िल जन्ना, मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। सुभानअल्लाह, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही ना रसूल अकरम से, कि कितने अक्लमंद थे सहाबा। तो रसूल अकरम ने कहा कि कुछ और भी कहो, औ गैर ज़ालिक, यानी वो समझे थे कि यंग से सहाबी हैं तो कुछ और भी मांगेंगे, कुछ और चाहेंगे। तो मैंने थोड़ी देर गौर किया और कहा कि हुवज़ाक, नहीं या रसूलुल्लाह, बस सिर्फ वही चाहिए, यानी आप ही का साथ चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं, तो बस आप ही का साथ चाहिए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाइनी अला, बस तू मदद फरमा, किस चीज़ से, बिकसरत सुजूद। तो बस आपने फरमाया कि कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। सही मुस्लिम की हदीस है। सुभानअल्लाह, रसूल अकरम ने ये नहीं कह रही कि ठीक है खुश होकर, ये नहीं फरमाया कि ठीक है तुम रोज़ाना मुझे वज़ू कराते तो जाओ तुमने जो मांगा दे दिया गया, नहीं, बल्कि आपने, आप देखिए कैसे उनको इबादत पर उकसाया, क्योंकि यंग से सहाबी थे ना। तो आपने कसरत सुजूद कब हो सकती है, आप देखें फ़र्ज़ नमाज के तो मालूम है कि फ़र्ज़ नमाज में इतने ही सजदे करने, इतनी ही रकात है, उतनी ही नमाज़ें पढ़नी है। तो कसरत सुजूद उसी वक्त पॉसिबल है जब आप नफिल नमाज कसरत से पढ़ेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो कुरान पर ईमान नहीं लाते और सजदा नहीं करते। अगली आयत देखिए, वल्लाहु आलमु बिमा युऊन, और जो कुछ वो दिलों में महफूज रखते हैं अल्लाह ताला उसको जानता है, और उनको फिर अज़ाब की बशारत दे दो। फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून, अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए अज्र है जो कभी मुनक़ते ना होगा। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि वो लोग, यानी यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है यूऊन, इसके मानी है किसी चीज़ को थैली में रखकर ऊपर से उसका मुंह बंद कर देना। तो यहाँ पर उस लिहाज से इसका मानी होगा कि बुखल भी हो सकता है और हिफाजत करना भी हो सकता है और छुपा कर रखना भी हो सकता है, या किसी चीज़ को याद रखना भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ तीसरे मानी में इस्तेमाल हुआ है, यानी काफिर लोग जो बुग्ज़ और इनाद और कीना इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने दिलों में छुपाए हुए हैं, अल्लाह ताला उससे खूब वाकिफ़ है, उसे खूब जानता है। तो ये जो कुछ दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अल्लाह ताला को उसका इल्म है, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। और जो लोग इनसे वही लोग बच सकेंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात, जो नेक आमाल करते रहे, उनके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। ममनून का जो मानी यहाँ पर आता है, ये भी तीन मानों में आता है, एहसान करना, एहसान जतलाना, काटना और कटना, यानी क़त व इनक़ता। तो यहाँ पर तीसरे मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि इसके मानी में ये शामिल है कि आखिरत में मोमिनों का अजर ज़ाय नहीं होगा, अहले जन्नत को जो अजर दिया जाएगा या जो अजर मिलेगा उसमें कभी कमी वाक़ नहीं होगी, उसमें कोई इनक़िता नहीं होगा, उसमें कोई ख़त्म ना होने वाला अजर उनको दिया जाएगा, उसमें कोई कमी बेशी वाक़ नहीं होगी। सुभानअल्लाह, यानी ईमान और अमल सालेह का फ़ायदा आप देखें कितना ज़्यादा है, कि उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी मोमिनों के अजर में। लेकिन उसके लिए जो शर्त यहाँ दी गई है वो क्या है, ईमान और अमल सालेह। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि ईमान फ़ायदा देगा, अगर ऐसा होता तो हर जगह ईमान की बात आती है। सूरतुल असर में भी आप देखें कि यही बात आई है कि वहाँ पर भी ईमान और अमल सालेह कहा गया है, खसारे से वही लोग बचेंगे जो ईमान और अमल सालेह करेंगे। तो सिर्फ ईमान फ़ायदा नहीं दे सकता इंसान को जब तक कि अमल सालेह ना हो। और अमल सालेह क्या है, क़ुरान और सुन्नत के बताए गए अहकाम को फॉलो करना, क़ुरान और सुन्नत में जो बातें बताई गई हैं उसको बजा लाना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, यही आमाल सालेह है। और आप देखिए सहाबे कराम ने इस क़ुरान को कैसे किस अंदाज़ में लिया और कैसे पढ़ा और कैसे जाना और कैसे समझा। कुछ लोग थे उसी वक्त जो हक़ से इनाद रखते थे और क़ुरान पर ईमान नहीं लाते थे, ना सजदा करते थे, ना اللہ کے آگے جھکتے تھے اور نہ ہی قرآن پر ایمان لاتے تھے۔ لیکن قرآن کا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب اس قرآن کو تھاما اور جب وہ اس قرآن پر ایمان لائے تو ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ قرآن ان کی زندگی پر اتنا اثر انداز ہوا کہ دشمن بھی جو سنتا اس کا قائل ہو جاتا تھا، اس قرآن کی عظمت کا قائل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ ساحرانہ کلام ہے۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جب قرآن پر وہ ایمان لائے، جب رسول اکرم نے مصعب بن عمیر کو وہاں سفیر بنا کر بھیجا تھا مدینہ میں، اور اسید بن حضیر پہلے تو غصے میں تھے، قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ بیٹھ کر سنیے تو صحیح، جب ایک بار قرآن پڑھا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ان کی اسکن سے پہچانے جانے لگے کہ یہ بالکل چینج ہو گئے ہیں، اور کہا کہ یہ کیسا کلام ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا اس پر ایمان لانے کے لیے، اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے۔ صحابہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اسید تو بس قرآن کے ہو کر رہ گئے ہیں، اور خود اسید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور اس کو یعنی پڑھتے تھے اور اس کو اپنے سینے پر رکھ لیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ یعنی ان کا صرف آنکھوں سے چومنا اور سینے سے لگانا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے زندگیاں بدل دی تھیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ تو قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو اندھے بہروں کی طرح پڑھ کر ہم اس پر سے گزر جائیں، بلکہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے اور سنانا بھی ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ اس قدر قرآن پڑھتے تھے کہ ان کے والد نے شکایت کی رسول اکرم سے آ کر کہ یا رسول اللہ، دن رات قرآن ہی میں لگا رہتا ہے، پوری پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتا ہے۔ تو رسول اکرم نے ان کو بلا کر کہا تھا کہ تمہارا اپنا جسم پر بھی تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اتنا بھی زیادہ قرآن میں انوالو نہ ہو جاؤ۔ اور رسول اکرم نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھ میں زیادہ طاقت ہے پڑھنے کی، مجھے آپ اجازت دیجیے، میں اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ آخر کار وہ یہاں تک آئے تھے کہ ٹھیک ہے، 3 دن سے کم عرصے میں قرآن نہ کمپلیٹ کرو، یعنی کم سے کم 3 دن لگاؤ، یعنی وہ اس سے بھی زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تلاوت سے اتنا شغف تھا کہ وہ 7 دن میں ایک بار پورے قرآن کی تلاوت کا مکمل کر لیا کرتے تھے۔ ایون جو ان کا آخری وقت تھا شہادت کا، اس وقت بھی وہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے صحابہ۔ ایسا یعنی یہ قرآن کا اثر ایسا ہوا تھا ان کے دلوں پر، اس قرآن کو انہوں نے ایسے لیا تھا کہ وہ تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، غور و فکر بھی کرتے تھے، تدبر بھی کرتے تھے، اور دنیا کے سارے کام کاج میں حصہ بھی لیتے تھے۔ مسلسل جوہد مسلسل تھی ان کی زندگی، دیکھا جاتا ہے کہ مثالی زندگی تھی۔ ہم تو اگر جب کچھ کام کرنے میں لگتے ہیں سوشل ورکنگ میں تو قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا دین کے کام میں بھی ایون لگتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو بغیر قرآن کے آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ قرآن تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، ہماری گائیڈ بک ہے، یہ تو اسی کو تو پڑھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو بہرحال میں اور آپ، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے قرآن کس طرح پڑھا یا کیسے پڑھتے ہیں، کیا ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یا ہم کتنا وقت قرآن کو دیتے ہیں، ہمارا 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس مخصوص ہے۔ اگر ہم روزانہ قرآن کو نہیں پڑھتے تو ہمیں غذا کہاں سے ملے گی؟ آپ سوچیں پھر کیا حال ہوگا ہمارے، ہماری روح کا کیا حال ہوگا جب روح کو غذا ہی نہیں مل رہی ہے اللہ کی کتاب سے، کیونکہ ہماری روح کی اصل غذا اللہ کی کتاب سے ہم کو ملتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، تو پھر ہم کو اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے، اور ہم کو اپنی زندگی بدل لینی چاہیے۔ تو پھر جو سوچنے کی باتیں ہیں، جو قابل غور نکات ہیں، کہ آخرت کی فکر کریں ہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ ہم کو اکیلے ہی نہیں جانا ہے جنت میں، بلکہ ہم کو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم کو ان کو بھی شامل رکھنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو ان کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کو بھی اس فیلڈ میں لانا پڑے گا۔ پھر اپنی آخری منزل آخرت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، کہ ہم کو ایک دن قبر کے اندھیروں میں جا سونا ہے۔ دنیا میں تو ہم کتنے آرام دہ بستروں پر سوتے ہیں، لیکن ہم کو قبر میں بھی جا کر کب تک رہنا ہے ہمیں نہیں پتہ، عالم برزخ کا کتنا عرصہ ہے۔ پھر قرآن کو غور سے سنیں اور اس پر تدبر کریں، قرآن میں تدبر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، یا غور و فکر نہیں کرتے، نہیں جھکتے نہیں ہیں۔ تو قرآن پڑھیں اور غور و فکر کریں، تدبر کریں، نوافل کا اہتمام کریں تاکہ کثرت سجود ہو، کیونکہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ٹھہرے، یعنی ناپسندیدہ لوگ۔ تو ہم کیا کریں پھر، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، اس کی بندگی بجا لائیں۔ نیک عمل یعنی عمل صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ سکے، کیونکہ وہی چیز آخرت میں کام آئے گی۔ کیونکہ آخری آیت میں کیا کہا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہے، اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جو کبھی ख़त्म नहीं होगा, जो कभी डिसकंटिन्यू नहीं होगा या फिर उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, मुसलसल उनको अजर मिलता रहेगा। अल्लाह ताला करे कि हम उन लोगों में शामिल हों जो आखिरी आयत के मुताबिक जो लोग हैं कि जो ईमान लाए और अमल सौले करते रहे, और उनका अजर अल्लाह ताला कभी मुनक़ते नहीं करेगा, कभी उसको ख़त्म नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी तौफीक दे और अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला हमें जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, आमीन। अच्छा, ख़त्म होने से पहले एक तस्हीह करनी ज़रूरी थी। लास्ट टाइम शायद हो सकता है ज़ुबान से ये बात निकली थी, उसकी मैं तस्हीह करना चाह रही हूँ कि 30वें पारे में सारे ही मक्की सूरतें हैं। एक्चुअली कहने में गलती से ये बात हो गई, एक यहाँ बताना मकसद ये था कि 99% मक्की सूरतें हैं, लेकिन 2-3 सूरतें सिर्फ मदनी हैं। और ये बात भी आप याद रखें कि जब जैसे हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो भी सूरतें मक्का से पहले, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई, मक्का में नाजिल हुई हिजरत से पहले, मदीना हिजरत करने से पहले, वो मक्की कहलाती हैं। और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी कहलाती हैं, चाहे वो मक्का ही में क्यों ना नाजिल हो। जैसे कि सूरत नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, हजरत अलविदा के मौके पर नाजिल हुई थी। तो उस वक्त तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जाए तो रहते तो मदीना में थे, लेकिन वो मक्की कहलाएगी। तो कुछ सूरतें, यानी बहुत ही 2-3 सूरतें सिर्फ 30वें पारे में मक्की मदनी हैं, बाकी सारी की सारी मक्की हैं। तो लास्ट टाइम कहने का मकसद ये था, असल में वो जहन में बात ये थी लेकिन ज़ुबान से ये बात निकली कि सारी ही सूरतें मक्की हैं। एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि चंद सूरतों को छोड़कर बाकी सारी की सारी मक्की सूरतें हैं। तो ये आप उसकी इसको नोट कर लें ताकि ये बात जहन में आ जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।